At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPerksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
Hey there, you're listening to The Quint.
कोरोना वायरस संकट की वजह से हमने बीते साल काफी कुछ खोया है, लेकिन कोरोना वैक्सीन आने के बाद से उम्मीद की किरण जागी है। 16 जनवरी से शुरू कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बनने जा रहा है, लेकिन इसी वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं और शंकाएं हैं, जैसे कि वैक्सीन के आम लोगों तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या होगी, कोविन ऐप पर कब रजिस्टर करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, आपको किन नियमों का पालन करना है, क्या मार्केट से वैक्सीन खरीद पाएंगे, क्या आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से चुन सकें कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी है, या फिर ये सवाल कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है। इन सभी सवालों के जवाब आज इस पॉडकास्ट में आपको बताएंगे। क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं बिग स्टोरी हिंदी, मैं हूं फबीहा सैयद। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस पॉडकास्ट में हम आपकी वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया से जुड़ी शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे और जिन सवालों का पहले हमने जिक्र किया है उनके भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पॉडकास्ट में सबसे पहले आपको सुनाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बैठक के बाद देश को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस वैक्सीनेशन से जुड़ी सारी जानकारी साझा की। सुनिए वो बता रहे हैं कि किसे कब मिलेगी वैक्सीन।
हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। साथियों, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में, वैसे एक प्रकार से वो तीसरा चरण हो जाएगा, लेकिन हम अगर इन 3 करोड़ को एक माने तो दूसरा चरण, 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है उनको टीका लगाया जाएगा।
अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। हमारे सहयोगी और इस एपिसोड के प्रोड्यूसर वैभव पलिनीटकर ने क्विंट की हेल्थ रिपोर्टर कौशिकी कश्यप से बात की है। उनकी बातचीत सुनने के बाद आपके वैक्सीन से जुड़े ज्यादा सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सुनिए।
वैक्सीन और वैक्सीनेशन की सारी प्रक्रिया और उनसे जुड़े सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फिट हिंदी की सहयोगी कौशिकी कश्यप। कौशिकी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को समझाइए कि वैक्सीन उन्हें कब मिलेगी।
वैक्सीनेशन के लिए अगर आम लोगों की हम बात करें तो उनका नंबर अभी फिलहाल नहीं आने वाला है, लेकिन 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की जा रही है, तो इसमें अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल होंगे और उनको सरकार की तरफ से वैक्सीन दी जा रही है। इसके बाद 50 साल से ज्यादा की उम्र के और 50 साल की उम्र से कम लोग जो मॉर्बिड हैं, जिनको दूसरी बीमारी है, उनका नंबर आएगा, तब जाकर आम लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी।
ओके, इसके लिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, आप समझा सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए अभी जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव का जो फर्स्ट पेज चलेगा जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, उसके लिए सरकार ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर चुकी है, उनके पास उनका अपना एक डेटा बेस है, लेकिन जब आम लोगों के लिए वैक्सीन रोल आउट किया जाएगा तो उनके लिए कोविन ऐप है एक जो सरकार लेकर आ रही है, और वो कोविन ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसी ऐप के जरिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी।
ओके कई लोगों के मन में सवाल है कि इस वैक्सीन जो कि वो सरकारी प्रक्रिया के तहत दी जानी है तो इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप वैक्सीन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं?
देखिए डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे जरूरी होगा कि फोटो आईडी कार्ड हो उनके पास, और सरकारी कोई भी आईडी कार्ड चल सकता है, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज मैं ये बता दूंगी ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जॉब कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं, मतलब उसको डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा श्रम मंत्रालय की स्कीम के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड भी इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, रजिस्ट्रेशन आप उसके जरिए भी करा सकते हैं।
एक मन में सवाल सबके कि कोरोना वैक्सीन की जो मतलब कीमत क्या होगी और क्या ये प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर भी खरीदी जा सकती है?
देखिए फिलहाल ऐसा नहीं है, सरकार ने इसके बारे में अभी कुछ भी बताया नहीं है कि ये प्राइवेट स्टोर से कब से मिलेंगी, लेकिन अभी सरकार के द्वारा ये फर्स्ट फेज में जितने लोगों को भी मिलने जा रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसके बाद क्या स्टेप लेगी सरकार इसको लेकर अभी कोई कुछ भी मतलब सॉलिड जवाब हमारे पास नहीं है। हालांकि कंपनियां अपने अपने जैसे कोवैक्सीन के बारे में हम बात करें तो सॉरी कोविशील्ड के बारे में बात करें तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि 1000 उसका मतलब उसकी कीमत 1000 रुपए तक हो सकती है कोविशील्ड की। कोवैक्सीन को लेकर अभी ऐसी रिपोर्ट भी नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम इसे फ्री मानकर चल रहे हैं फर्स्ट फेज में जिन लोगों को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जो 50 साल के उम्र के लोगों को भी मिलना है वो उनके लिए फ्री होगा या नहीं ये भी अभी तक साफ नहीं किया सरकार ने।
जी अब एक सवाल कि जो कोरोना वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो वैक्सीन लगवाने के दौरान किन नियमों का पालन करना होगा?
देखिए नियम तो वही सबसे पहला नियम जो है वो ये है, उनको ध्यान में ये रखना होगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो एक बेसिक रूल वो फॉलो करते आ रहे हैं वो उनको नहीं छोड़ना है। उसमें मास्क का यूज है, हैंड हाइजीन है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन है, वो उनको वैक्सीन लगवाने के बाद भी जारी रखना है। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं आपको वैक्सीन लग जाती है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कम आधे घंटे तक वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको रेस्ट करना है। आप आराम करके देखें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, और अगर इनकेस आपको किसी तरीके की बेचैनी महसूस होती है तो आप वहां मौजूद हेल्थ अथॉरिटी या नजदीकी ANM आशा कर्मी को इसके बारे में तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं और फिर मेडिकल हेल्प या जिस तरीके की भी हेल्प आपको चाहिए वो आपको मुहैया हो सकती है।
अच्छा एक सवाल हो सकता है कि वैक्सीन लगवाने के लिए किसी आदमी को कितने पास या कितने दूर जाना पड़ सकता है, और वैक्सीन लगाने के लिए जो दो डोज है उसके बीच का समय अंतराल कितना होगा?
देखिए वैक्सीन लगवाने के लिए कहाँ जाना होगा इसके लिए चूंकि वही बात मैं दोहराऊंगी कि आम लोगों के को कब से दिया जाएगा ये वैक्सीन अभी जानकारी नहीं है, और जो भी होगा वो कोविन ऐप के जरिए होगा। तो कोविन ऐप पर ही आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ये जानकारी शेयर कर दी जाएगी कि आपका जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो कहाँ पर होगा। और जहाँ तक रही बात डोज की तो हेल्थ मिनिस्ट्री की माने अगर गाइडलाइंस को की बात करें तो उनका कहना है कि दो शॉट के बीच कम से कम वैक्सीन के दो डोज आपको लेने हैं, और उन दो डोज के बीच में आपको 28 दिनों का अंतराल याद रखना हो।
एक और बात है कि जब तक वैक्सीन मार्केट में नहीं मिलती है तब तक क्या अभी जो 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा रही है क्या उनके पास वैक्सीन चुनने का विकल्प होगा कि मैं कोविशील्ड या कोवैक्सीन ही लगवाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ प्रावधान है?
नहीं ये अभी इस पे भी कोई सरकार की तरफ से सफाई नहीं आई है, और सफाई नहीं आई है इसका मतलब ये है कि विकल्प नहीं दिया गया है। कहने का मतलब सरकार ने ये संकेत दे दिया है कि आप वैक्सीन चुन नहीं सकते हैं, आपको जो वैक्सीन दी जाएगी आपके वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको वही वैक्सीन लेनी है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि आप वैक्सीन चूज करके।
तो सवाल आ रहे हैं कि क्या जिसको वैक्सीन दी जाएगी उसको पता रहेगा कि मुझे कौन सी वैक्सीन लग रही है, इसके बारे में क्या सफाई आई है?
देखिए अभी माना जा रहा है कि सरकार लोगों को ये नहीं बताएगी कि उन्हें कौन सी वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई सफाई अभी तक नहीं आई है, ये जरूर है कि वैक्सीन दिए जाने से पहले लोगों से एक अनुमति पत्र पर सिग्नेचर कराया जाता है, काइंड ऑफ कंसेंट भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये साफ बिल्कुल नहीं हो पाया है अभी तक कि सरकार लोगों को ये बताने जा रही है कि उन्हें कौन सी वैक्सीन मिलने जाएगी
एक और मन में कई लोगों के सवाल है कि जब दो वैक्सीन है तो क्या एक डोज दूसरी वैक्सीन का और जो दूसरा डोज है वो दूसरे तरह की वैक्सीन का ले सकते हैं क्या?
इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन वैक्सीन के पॉजिटिव रिजल्ट इसकी वजह से नहीं मिलेंगे। तो अभी तक जो बातें सामने आई है उसमें तो यही है कि वैक्सीन की जो डोज आपको पहली बार लग रही है आपको दूसरी डोज भी उसी कंपनी की मिलेगी।
अच्छा, एक और सवाल कि क्या कोरोना वायरस वैक्सीन लेना किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है?
नहीं, देखिए ये सेफ्टी के लिहाज से तो बोला जा रहा है कि आप सबको वैक्सीन लेना चाहिए, सभी के लिए जरूरी होना चाहिए ये, लेकिन ये पूरी तरीके से आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप लेना चाहें तो लें, नहीं मर्जी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
अच्छा, कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या वैक्सीन लेते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे, ऐसा होगा? या फिर जो एंटीबॉडी बनती है वैक्सीन लगने के बाद उसमें वक्त लगेगा, तो कितने दिन बाद कोरोना वैक्सीन का जो असर है जो कोरोना से बचाव का वो कवच देगी वो कितने दिन में तैयार होगा?
देखिए वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद अगर आप सोचे कि आप कोरोना से सुरक्षित हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी वायरस अटैक से बचने के लिए आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचे तो एक एंटीबॉडी का एक लेवल है वो आपके शरीर में मौजूद होना चाहिए। तो वैक्सीन की जहां तक हम बात करें तो जब COVID-19 वैक्सीन का आप दूसरा डोज देंगे उसके 2 सप्ताह बाद आमतौर पर एक एंटीबॉडी का एक सुरक्षात्मक लेवल आपके शरीर में तैयार हो जाता है। तो कम से कम दूसरी डोज देने के बाद 2 सप्ताह बाद ये जाकर तैयार होगा आपकी बॉडी में।
अगर कोई कोरोना वायरस से जैसे पहले संक्रमित हो चुका है और उसके बाद उबर चुका है, क्या उसके लिए वैक्सीन लेना जरूरी होगा या लेना चाहिए उसको?
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जिनको कोरोना हो चुका है उनको भी वैक्सीन का पूरा डोज ले लेना चाहिए।
अच्छा,
ये उनका कहना है। जी,
इसके पहले जो दूसरे रोग से कई लोग जूझ रहे हैं, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है या फिर और भी दूसरे रोग, क्या उनके लिए वैक्सीन लेना ठीक होगा?
देखिए वो तो ज्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में है तो उनको उनके लिए वैक्सीन जरूरी भी है, लेकिन इमरजेंसी में वैक्सीन लेने से पहले डॉक्टर से बात जरूर कर लेनी चाहिए। उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल होगा लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद वैक्सीन लेना प्रेफर करना चाहिए।
जी, जैसे कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवा लेता है क्या उसके बाद उसको मास्क लगाए रहना या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, सैनिटाइज करना, ये सारी चीजें जरूरी होंगी या वो फिर मुक्त हो गया, वो ये सब छोड़ सकता है?
देखिए हमने अभी जस्ट इस पे बात की कि वैक्सीन लेने के तुरंत बाद हम कोरोना से बच रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। आपको भी सुरक्षित होने में समय लगेगा, एंटीबॉडी आपके बॉडी में तैयार होगी। और इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगने के बाद मास्क लगाए रहना जरूरी होगा क्योंकि आप कोरोना वायरस दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, आप उसके कैरियर हो सकते हैं, आप भले उससे बच जाएं लेकिन आप दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सारी जो बेसिक रूल्स हैं मास्क लगाने जैसे वो फॉलो करना है आपको।
जी, जैसे इसको ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज कोई फ्रंटलाइन वर्कर है, पुलिस में है, हो सकता है उसको कोरोना वैक्सीन लग जाए लेकिन हो सकता है वो घर में आके अपने पत्नी को या फिर अपने बच्चों को इन्फेक्ट कर सके।
बिल्कुल, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
एक और सवाल है कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं वैक्सीन ले सकती हैं और बच्चे क्या वैक्सीन ले सकते हैं?
नहीं, अभी प्रेग्नेंट महिलाओं पर वैक्सीन ट्रायल नहीं हुए हैं तो बेहतर होगा कि अभी इमरजेंसी में वैक्सीन ना लें। और स्वास्थ्य मंत्रालय की फैक्टशीट में भी प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन नहीं देने के लिए कहा गया है, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है ऑलरेडी। और अभी वैक्सीन सिर्फ 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ही अवेलेबल होगा।
कई सारे हमारे जो सुनने वाले हैं उनके मन में सवाल हो सकता है कि कई सारी साइड इफेक्ट से जुड़ी खबरें आई हैं, तो अगर किसी को वैक्सीन लगाने के बाद कोई साइड इफेक्ट दिखता है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करना है, कहाँ जाकर करना है, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
देखिए जब कोविन ऐप जो है वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आपको ट्रैक करेगी, तो अगर आपको साइड इफेक्ट होता है वैक्सीनेशन के बाद तो रिपोर्ट करने के लिए भी आप कोविन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां जाकर आप अपने साइड इफेक्ट के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं।
अच्छा, अब एक आपसे आखिरी सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि दो तरह की वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनके जो तात्कालिक साइड इफेक्ट हैं वो क्या हो सकते हैं और अगर लॉन्ग टर्म में सोचें वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन जो कोरोना के दूसरे अलावा भी वैक्सीन है, हर वैक्सीन में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये कोविड से जुड़ी वैक्सीन में क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं?
देखिए अभी तक जो वैक्सीन हमारे यहाँ यूज होने जा रही है उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो साइड इफेक्ट होंगे वो अस्थायी होंगे, वो लॉन्ग टर्म के आपको साइड इफेक्ट नहीं दिखते हैं, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो। लेकिन कोविशील्ड के लिए स्पेसिफिकली हम बात करें तो इंजेक्ट की गई जगह पर दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ज्वाइंट पेन जैसे हल्के लक्षण दिख सकते हैं। और फैक्टशीट के मुताबिक इन लक्षणों के असर को कम करने के लिए पैरासिटामोल लिया जा सकता है।
जी।
और जहाँ तक बात है कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन के बारे में जो साइड इफेक्ट हैं वो है कि इंजेक्ट की गई जगह पर आपको सूजन हो सकता है, दर्द हो सकता है, आपको वोमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, पसीना आ सकता है, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, बदन दर्द, ज्वाइंट पेन, मांसपेशियों में दर्द, तो ये हल्के लक्षण आपको कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट के तौर पर दिख सकते हैं।
कौशिक जी, हमारे सुनने वालों को इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू
ओके, धन्यवाद।
तो अब वैक्सीन और वैक्सीनेशन से जुड़े हुए ज्यादातर सवाल और उनके जवाब आप जान चुके हैं। अगर अभी आपके दिल में कोई सवाल है तो हमें क्विंट हिंदी, फिट हिंदी की वेबसाइट्स पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हमने वैक्सीन से जुड़े कई सारी स्टोरीज की हैं। तो हमें फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस पॉडकास्ट के एडिटर हैं संतोष कुमार, इसकी होस्ट और साउंड एडिटर हैं फबीहा सैयद, और इसे प्रोड्यूस किया है वैभव पलिनीटकर ने। अगर आपको बिग स्टोरी हिंदी सुनना पसंद है तो क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर लॉग ऑन कीजिए और हमारे पॉडकास्ट सेक्शन का मजा लीजिए।